आप सबका स्वागत है यहाँ। आभारी हैं कि इतनी तेज धूप में भी आप लोग यहाँ भगवान की कथा सुनने आए हैं, सत्संग करने आए हैं, तो इसीलिए आपके आभारी हैं। कृपया इसी तरह आते रहें। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी का उत्सव था। रावण का एक प्रसंग स्मरण आता है। ऐसे कहा जाता है कि जिस समय रावण का वध हुआ, रावण मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ सीखो रावण से। जब लक्ष्मण गए, लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामचंद्र जी कह रहे हैं रावण से सीखना। तो जब रावण के पास गए तो लक्ष्मण के मन में बड़ी दुविधा थी कि रावण से क्या सीखना है। तो रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे पता है कि आप बड़े अचंभित हो रहे हो कि रामचंद्र जी ने आपको मेरे पास भेजा है सीखने के लिए। वैसे तो रामचंद्र जी आपको सब कुछ सिखा सकते हैं। रामचंद्र जी आपको वो सारी चीजें सिखा सकते हैं जो करनी चाहिए, वो अपने आचरण से दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सिखा सकता हूं जो नहीं करना चाहिए, अर्थात गलत काम। सही काम रामचंद्र जी वो तो हमेशा सही करते हैं, लेकिन गलत रावण से सीखना है। इसको सुनकर एक महत्वपूर्ण बात हमें स्मरण आती है कि जब हम लोग इस जगत में रहते हैं तो किसका हम संग करें और किसका ना करें, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग करना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ साथ असत्संग क्या है वो भी जानना चाहिए, दुसंग क्या है, बुरा संग क्या है वो भी हमें जानना चाहिए। दोनों चीजें आवश्यक हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम केवल सत्संग करते हैं और असत्संग या बुरे संग को नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम केवल बुरे संग को छोड़ देते हैं लेकिन सत्संग नहीं करते तो भी कोई लाभ नहीं है जीवन में। हमें दोनों करना चाहिए। हमें सत्संग करना चाहिए भक्तों के संग में। सत्संग मतलब साधुओं का संग, सत्य का संग, ऐसे लोगों का संग जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, या ऐसा संग जो हमें सत्य मार्ग पर ले जाए, असत से दूर करे। असत इस जगत में केवल चिंताओं को उत्पन्न करता है। प्रहलाद महाराज अपने ही पिता हिरण्यकश्यपु से ये कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियान असत ग्रहा। वो कहते हैं कि जिसने भी असत को ग्रहण किया हुआ है सदा समुद्विग्न, उद्विग्न मतलब बहुत चिंता में रहेगा वो हमेशा। क्यों? क्योंकि उसने असत ग्रहण किया है। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है हम दोनों चीजों को जानें, सत को स्वीकार करें। तो सत का मतलब होता है सत्संग, ऐसे लोगों के संग में आना जो सत के मार्ग पर हैं, ऐसे लोगों के संग में आना जो हमें सत के मार्ग पर ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाम मात्र का सत्संग है लेकिन वहां ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान का रूप क्या है। ऐसे कई तथाकथित सत्संग होते हैं जहां आप जाएंगे तो वे लोग कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं, भक्ति की चर्चा नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके एक नैतिकता के स्तर पर थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन कभी भी श्री कृष्ण, भगवत गीता, या भक्ति की बात नहीं करते हैं। सत्संग वो है जो हमें सही सत्य की ओर ले जाए, सत्य परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो उनकी ओर ले जाए वो सत्संग है। सच्चा गुरु कौन है? कभी कभी किसी भी गुरु को सद्गुरु का एक उपाधि दे दी जाती है कि ये सद्गुरु है। हर कोई सद्गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु या सद्गुरु वो है जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन में हमें ये सिखलाए कि ये जो कष्ट देने वाली स्थिति है ये क्यों है आपके जीवन में, और एक ऐसा मार्ग हमें दिखलाए जहां से हम इन कष्टों से परे जाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर जा सकें, मुड़ सकें। इसे सतगुरु कहते हैं। तो इसलिए असत संग को जान लेना भी आवश्यक है। तो आज थोड़ी बहुत चर्चा असत संग पर करेंगे कि ये क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना कि असत संग कैसा होता है। सत्संग तो जैसे हमने बताया शुद्ध भक्तों का संग, और क्योंकि शुद्ध भक्त कौन है? जो सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल कृष्ण का स्मरण करे? संभव नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत चीजें होती हैं स्मरण करने के लिए। श्रीमद् भागवत में शुभदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, श्रोतव्यादीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः। सुनने के लिए बहुत सी चीजें हैं लोगों के पास, लेकिन जो असली चीज है अपश्यताम आत्म तत्वम, अपने आप को, आत्मा को, आत्म तत्व को नहीं देखते हैं। फिर किसको देखते हैं? बाहर की चीजों को। पश्यन अपि न पश्यति। आत्मतत्व अर्थात वो व्यक्ति सुखी रह सकता है जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया और उसका साक्षात्कार कर लिया। अन्यथा सभी लोग जो शरीर के स्तर पर शरीर से आनंद लेने का प्रयास करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। तो भक्त भगवान के, क्योंकि वे आत्मा को जानते हैं, आत्मा के स्तर पर हैं, और इसी कारण से उनका संपर्क श्री कृष्ण से है। हम सबका भी संबंध श्री कृष्ण से है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो केवल कृष्ण के भक्त हैं उनका संबंध तो कृष्ण से है, बाकी किसी का नहीं। हम सबका है, हर एक जीव का है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जितने भी जीव हैं, भगवान ने नहीं कहा जितने हिंदू हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने ईसाई हैं, नहीं, भगवान ने कहा जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, मैं इनका पिता हूं। एक अन्य स्थान पर भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। इसीलिए हम सब का संबंध है, केवल इस समय भूले हुए हैं उस संबंध को। इसीलिए भगवद गीता, भागवत, सत्संग हमें वो पुनः स्मरण कराने का मार्ग है, हमारे उस संबंध को जिसको हम भूले हुए हैं पुनः स्मरण कराने का मार्ग है सत्संग। इसीलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसमें आना चाहिए, असत्संग को त्यागना चाहिए। असत्संग क्या है? बुरे कार्यों को करना। सरल भाषा में, बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति, उसका हम अगर संग करते हैं तो वो असत्संग कहलाता है। कभी कभी जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, कई बुरी चीजों को छोड़ देते हैं, तो लोग प्रश्न करते हैं कि अरे आप ये कहते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये तो स्वाभाविक है, शरीर मिला है तो शरीर की कुछ स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? ये गलत नहीं हो सकता, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज स्वाभाविक है उसको कैसे छोड़ सकते हैं। उन लोगों का कहना गलत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें शरीर के लिए स्वाभाविक हैं, लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है, आत्मा शरीर से परे है। उद्देश्य ये होना चाहिए हमारे जीवन में कि हम आत्मा की स्वाभाविक चीजों को करें। आत्मा की स्वाभाविक चीज क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। उस स्वाभाविक स्थिति, अपने आप को भगवान का अंश, भगवान का दास मानकर जो कार्य हम करते हैं वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, वो हमारे लिए स्वाभाविक कार्य है। शरीर को हम अपना मानते हैं, लेकिन ये शरीर हमारा है कहां? हम अगर इसको पकड़कर रखना चाहें तो रख नहीं सकते, जब समय आता है तो छोड़ना पड़ता ना चाहते हुए भी, फिर ये हमारा कैसे हो गया? तो इसीलिए इस चीज को जानना चाहिए। और असत्संग हमारी चेतना पर बहुत प्रभाव करता है। इस जगत में अगर सबसे बुरी चीज कोई है तो वो असत्संग, और सबसे ऊंची चीज, सर्वोच्च वस्तु इस जगत में है तो वो है सत्संग। भागवत में इसको कहा गया है, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्जनम भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम किमुता शिशः। भागवत कहता है कि हम बहुत बड़े बड़े वरदानों को चाहते हैं। क्या वरदान चाहते हैं? स्वर्ग में जाना, है ना? अगर हमें पता चले स्वर्ग में क्या क्या है तो हमारी बड़ी इच्छा होगी स्वर्ग में जाने की। स्वर्ग में जाना है, वहां अप्सराए हैं, नंदन कानन वन है, खाने के लिए फल हैं, पीने के लिए शराब है, कोई चिंता की बात नहीं, कमाना नहीं पड़ता वहां पर, पैसा नहीं कमाना पड़ता, जो चाहिए मिल जाता है, तो लगता है स्वर्ग बड़ा अच्छा है। इसीलिए लोग स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। कभी कभी कोई मर जाते हैं तो उनके आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है कि स्वर्गवासी हो गए, मतलब स्वर्ग चले गए। लोगों को लगता है वही सबसे अच्छी चीज है, लेकिन भागवत कहता है तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्जन्म। स्वर्ग वैसे इस जगत में, इस भौतिक जगत में एक लोक है बस, जैसे पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अमेरिका स्वर्ग है, चले जाते हैं वहां पर कुछ आनंद लेने के लिए, तो ऐसे इस जगत में रहने, इस ब्रह्मांड में रहने वालों के लिए एक स्थान है जिसको स्वर्ग कहते हैं, और वो इस पृथ्वी पर ही है, इसके बाहर नहीं। तो जो लोग इस ज्ञान को ले लेते हैं कि स्वर्ग सब कुछ नहीं है, उसके भी परे एक चीज है, और वो क्या है? न पुनर्जन्म, हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़े, क्योंकि स्वर्ग जाकर भी वापस आना पड़ता है। इस बात को समझिए, भगवान भगवत गीता में इसको कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। वो कहते हैं जिन लोगों ने बड़े अपने पुण्यों को जमा कर लिया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वो बड़े समय तक स्वर्गलोक में आनंद लेते हैं, लेकिन फिर क्षीणे पुण्य, जब उनके पुण्य समाप्त तो हो जाते हैं, फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है, अर्थात जन्म फिर लेना पड़ता है। तो स्वर्ग ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो जो लोग इसको जान जाते हैं वो फिर उस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं जहां से वापस नहीं आना पड़ता, न पुनर्जन्म, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो इसको वो लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो कोई स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई मुक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। भागवत कहते तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्जन्म, तुलना नहीं की जा सकती। सत्संग भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का एक क्षण मात्र का संग, इसकी तुलना नहीं की जा सकती किससे? स्वर्ग से या मोक्ष से। अर्थात स्वर्ग और मोक्ष से भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों का संग, सत्संग। और लेकिन जो असत्संग है वो क्या करता है? हमारी चेतना को इतना दूषित कर देता है कि हम सही और गलत को नहीं मान पाते, जान पाते। उदाहरण महाभारत में भीष्म का देखते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म भगवान की लीला में भाग ले रहे थे, इसीलिए वो दुर्योधन की तरफ थे। लेकिन एक बाहरी भौतिक दृष्टि से देखिए, नैतिकता की दृष्टि से देखिए, जिस समय युद्ध होने वाला था, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भीष्म को नहीं मार सकता, मैं द्रोणाचार्य को नहीं मार सकता, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। यही बात अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कही थी कि मैं नहीं मारूंगा, कतम हम भीष्म हम संखे, कैसे मैं भीष्म को और द्रोणाचार्य को मारूं, नहीं मार सकता मैं। जब युधिष्ठिर ने ये बात कही श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जिस समय मैं गया था वहां पर शांति दूत बनकर, आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए वहां कहने के लिए कि ठीक है थोड़ा बहुत दे दो, आधा राज्य नहीं तो 5 गांव दे दो वहां पांडवों को, दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन का जो संग था, जिन जिन लोगों को मिला, उनकी क्या अवस्था हुई देखिए। भीष्म महाजन है, भीष्म इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने सारे राज्य के ऐश्वर्य को त्याग दिया, नियंत्रण है उनका मन पर। लेकिन जब भीष्म, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय मैं वहां पर गया युद्ध की बात करने के लिए कि अगर आप 5 गांव नहीं देंगे तो युद्ध होगा, एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने युद्ध का विरोध नहीं किया, और वो व्यक्ति थे विदुर। उन्होंने कहा बोल विदुर ने विरोध किया, भीष्म ने विरोध नहीं किया, द्रोणाचार्य ने विरोध नहीं किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, श्री कृष्ण कहते मारना चाहिए उनको। जिस समय भीष्म बाणों की शैया पर थे, बाणों की शैया पर हम सब जानते हैं भीष्म बहुत दिनों तक रहे, प्रायः 2 महीने तक बाणों की शैया पर रहे। उस समय युधिष्ठिर आए, सब लोग आए, युधिष्ठिर श्री कृष्ण द्रौपदी इत्यादि सब खड़े थे और भीष्म उपदेश दे रहे थे युधिष्ठिर को, बहुत सुंदर, राजधर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, कैसे रहना चाहिए इत्यादि सब दे रहे थे, धर्म की बात सिखला रहे थे। और उस समय द्रौपदी ने जब भीष्म के मुख से ये सब बातें सुनी तो द्रौपदी हंसने लगी, मुस्कुरा दी। भीष्म ने देखा और भीष्म ने पूछा कि द्रौपदी क्यों हंस रही हो, क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा कि भीष्म देव, आज आप बड़े धर्म की बातें कर रहे हैं, आप धर्म सिखला रहे हैं, राजा का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, वर्णाश्रम में कैसे, ये सब आप धर्म सिखला रहे हैं सबके। उस समय आपका धर्म कहां था जब मेरे वस्त्रों को खींचा जा रहा था आपके सामने, आप भी वहां उपस्थित थे, तब धर्म कहां गया था आपका? आज आप धर्म की बात सिखला रहे हैं युधिष्ठिर को, ये देखकर मुझे हंसी आ रही है। भीष्म ने उत्तर दिया कि उस समय मैं दुर्योधन के भोजन को खाता था, इसलिए मेरी चेतना दूषित थी, आज मेरे शरीर से वो सारा रक्त निकल गया है जो दुर्योधन का दिया हुआ था, और इसीलिए आज मैं सच्चे धर्म की बात कर सकता हूं। अर्थात देखिए, दुर्योधन का संग करने के कारण, दुर्योधन के द्वारा दिए गए भोजन को, हालांकि दुर्योधन बनाया नहीं करता था, ऐसा नहीं कि दुर्योधन बनाकर देता था भीष्म को, लेकिन क्योंकि दुर्योधन के अधीन थे, दुर्योधन का वो खा रहे थे, केवल उतने से उनकी चेतना इतनी दूषित हुई कि अपने सामने इतने बड़े पाप को, इतने बड़े अधर्म को होते हुए वो देख सके। शास्त्रों के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप, बड़ा घृणित पाप है, किसी स्त्री को भरी सभा में लाकर उसको अपमान करना, स्त्रियों का मान करता है शास्त्र। भीष्म देव ने ये देखा, क्यों? दुर्योधन के खा रहे थे, दुर्योधन का संग कर रहे थे। कर्ण की बात आती है, कर्ण का अगर गुणगान किया जाए बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, तो कर्ण के अंदर बहुत गुण है, दानवीर था, कभी किसी को मना नहीं किया, शक्तिशाली था, इतना दानवीर था कि जब जानते हुए कि इंद्र उससे उसका कवच और कुंडल मांगने आए हैं, वो कवच और कुंडल जो उसकी रक्षा कर सकता है, जो बचपन से जन्म से उसके शरीर पर था, जब वो मांगने आए तो उसने वो भी दे दिया, मना नहीं किया। इतना दानवीर था। और केवल दानवीर नहीं, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण थे कर्ण के अंदर, लेकिन ये सारे गुण उद्धक गए दुर्योधन की मित्रता से, असंग असत संग से। दुर्योधन से मित्रता की, ये सारे भले हम लोग कहते कितने अच्छे गुण थे उसके अंदर, बहुत कुछ उसने किया कर्ण में, लेकिन दुर्योधन के संग के कारण। तो देखिए, अच्छे गुण हो सकते हैं लेकिन अगर दुसंग किया जाता है तो फिर क्या होता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि केवल सत्संग में आने से व्यक्ति बच सकता है। कभी कोई पूछ सकता है कि केवल सत्संग में आना बहुत है? नहीं, सत्संग को त्यागना है, साथ साथ सत्संग में केवल शरीर से आना बहुत नहीं है कि हम आकर बैठ गए हैं बस थोड़े देर चलेगा उसके बाद जाना है। मन होना चाहिए, यहां हृदय होना चाहिए सत्संग में, क्योंकि हमारा दूषण हृदय में है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं अकेले बैठ जाओगे, ना सत्संग करोगे ना दुसंग करोगे तो भी आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। आप सोच लीजिए मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा, घर में बैठूंगा दरवाजा बंद करके, क्या ये अच्छा है? नहीं, घर में तो वैसे बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि घर में तो बहुत बड़ा असत्संग होता है सबके घर में। 40 इंच का, 32 इंच का, मतलब नहीं कितने कितने इंच का आजकल होता है ना टीवी, सबसे बड़ा असत संग का मार्ग टीवी इंटरनेट इत्यादि। आज देखिए गांव गांव में, जहां छोटे छोटे गांव में आप चले जाइए, जहां पर लोग पहले बड़े आराम से शाम के समय जब एक साथ बैठते थे, कुछ रामायण महाभारत की कथा करते थे, बातचीत करते थे, चौपाल कहते थे उनको, हर एक गांव में ऐसा स्थान लोग बैठकर एक एक जगह कुछ करते थे। अब क्या हो गया है? अब टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया। जो चीजें गांव वालों ने कल्पना भी नहीं की थी कभी कि ये हो सकता है, वो सारी चीजें उनको दिखाई जाती। देखो ये हो, अमेरिका में ये होता है, जर्मनी में ये होता है, सब कुछ दिखाया जाता है उनको। तो फिर वो लोग भी क्या करें बेचारे। तो इसीलिए असत संग से बचना, ऐसे संग से बचना बहुत जरूरी है। प्रमाण ऐसा भी है शास्त्रों में कि व्यक्ति ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जैसे सौभरी मुनि। सौभरी मुनि ने कहा ये सब बाहर मुझे किसी का दुसंग नहीं करना है, सब असत्संग त्यागना है। तो कहां तपस्या करूं, बहुत जगह गए, जहां गए वहां असत्संग दिखाई दिया तो पानी के अंदर चले गए, नदी में अंदर जाकर तपस्या करें। तपस्या कर रहे हैं, आंख खोली, आंख खोलते ही सामने देखा मछलियां, दो मछली आपस में संग कर रही हैं। वो देखकर उनके जो इच्छाएं थी वो बढ़ गई। देखिए दुसंग का असर क्या होता है असत्संग का। ऐसा नहीं है कि हम सबके अंदर पाप करने की इच्छा नहीं है, हम तो उसको अच्छे कार्यों से दबा देते हैं, लेकिन जब असत्संग करते हैं तो वो इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वो पाप करने की इच्छा हमारे हृदय में बढ़ जाती है असत्संग करने। तो सौभरी मुनि अच्छे भले तपस्या कर रहे थे, बाहर निकल आए, बाहर निकलकर उस समय बहुत समय से तपस्या कर रहे थे तो शरीर भी ऐसा ही गंदा सा हो गया था और टेढ़ा मेढ़ा और वृद्ध लग रहे थे बड़े, लेकिन मन में इच्छा हो गई, देख लिया था मछलियों को कि अब विवाह करना है। राजा के पास चले गए, राजा से कहा कि मैं आपकी पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने देखा, अरे ये टेढ़ा मेढ़ा गंदा बूढ़ा, इससे मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करूंगा राजकुमारियों का? खैर, लेकिन फिर भी ब्राह्मण थे, मना नहीं करना चाहते थे राजा। तो राजा ने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मेरी पुत्रियां आपको स्वीकार कर लेंगी तब आप विवाह कर लीजिए, वो उनके ऊपर है। क्योंकि राजा तो जानते थे ऐसे व्यक्ति को देखकर राजकुमारियां थोड़ी ना हां बोलने वाली हैं विवाह के लिए, और कई पुत्रियां थी उनकी। तो ये समझ गए सौभरी मुनि, उनको लगा राजा ने इतनी जल्दी हां बोल दी है, ये सब क्या बात है, तो ध्यान किया तो उनके लगा हाँ मेरी स्थिति देखकर कह रहे हैं, क्योंकि मेरी स्थिति देखकर तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगी। तो फिर उन्होंने अपने रूप को बदल लिया, योग शक्ति से ये होता, तो बड़ा सुंदर रूप कर लिया। राजा को पता नहीं, राजा सोचे कि जा रहे हैं बूढ़े, अब वो गए एकदम युवा अवस्था में, बहुत सुंदर रूप, 50 पुत्रियां थी राजकुमारियां, 50 ने काम आपसे विवाह करें, उन्हें 50 से विवाह कर लिया। बताइए, एक वैरागी पानी में जाकर तपस्या कर रहे हैं, इधर 50 से विवाह कर लिया। अब 50 स्त्रियों से विवाह करेंगे तो परिवार भी तो छोटा तो नहीं होगा ना, कोई हम दो हमारे दो तो होने वाला नहीं है, तो परिवार भी बहुत बड़ा, 5,000 लोगों का परिवार हो गया उसका धीरे धीरे। तो एक दिन नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे, तो अचानक उनको ध्यान आया कि अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, ये क्या हो गया, ये कहां से इतना बड़ा परिवार उत्पन्न हो गया। तो खैर ये हो जाता है। तो उस समय ऐसे ही बात है कि असत संग, इससे हमें बचना चाहिए। ये असत संग इतना शक्तिशाली है कि अगर आप भगवान के साथ भी हैं तो भी हो सकता है कि आप इससे प्रभावित हो जाएं। इसका वर्णन आता है चैतन्य लीला में, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये एक समय जब यात्रा पे जा रहे थे, दक्षिण भारत की यात्रा इत्यादि, ऐसे अलग अलग यात्राएं उन्होंने की, तो उनके साथ एक सेवक को भेज दिया गया भगवान जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, जिसका नाम था काला कृष्णदास। तो वो उनके साथ साथ चला, भगवान के साथ है, महाप्रभु के साथ है, वो सन्यासी हैं, जहां जा रहे हैं कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, उनके ही साथ रहते हैं, साथ साथ रहे। जब कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर आए, कर्नाटक और केरल का बॉर्डर आता है, तो वहां पर जब आए महाप्रभु, तो वहां एक प्रकार की जाति थी जिसे भट्टाहारी कहते थे। तो वो जाति ऐसी थी कि वो लोग अपनी जाति बढ़ाने के लिए अपने, जैसे वो आप देखते ना कई होते हैं घूमते रहते हैं थोड़े बहुत, ऐसे अलग अलग जातियां नृत्य इत्यादि करते हैं, तो वे क्या करते थे कि बढ़ाने के लिए अपनी संख्या को अपनी स्त्रियों का इस्तेमाल करते थे, स्त्रियों को भेजते थे, वो पुरुषों को जाकर लुभा कर ले आती थी और फिर उनको विवाह करके वो लोग उनकी जाति का हो जाए। तो ऐसे भट्टहारी स्त्रियों ने काला कृष्णदास को प्रभावित कर लिया, वो काला कृष्णदास जो महाप्रभु की सेवा में था, और लेके चले गए उसको। महाप्रभु को जब पता चला तो वो गए वहां पर चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने कहा उसको लेने आया हूं मैं। तो जैसे ही महाप्रभु ने कहा, सारे लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पर आ गए, वो जो भट्टहारी होते हैं, तो वो लोग सब आ गए, अरे कैसे लेके जाते हैं, हम भी देखते हैं। तो सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। अब भगवान को कौन मार सकता है, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो जब वो आने लगे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में जब आए हैं तो वो युद्ध नहीं करेंगे, उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन अब सब आक्रमण कर रहे हैं तो क्या करें। तो उनकी माया शक्ति वो रुक नहीं पाई, भगवान तो रुक गए लेकिन शक्ति उनकी रुक नहीं पाई, और उन्होंने उनके ही जो अस्त्र से उनसे उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर, अचानक सब देख रहे कि उनके अस्त्र उनको ही मार रहे हैं। तो ऐसे वहां पर सारा तहस नहस हुआ, और फिर वो काला कृष्णदास को लेकर आ गए महाप्रभु। जब तक यात्रा करते रहे, फिर जब पुरी में वापस आए, तब उन्होंने उस काला कृष्णदास को त्याग दिया कि ये तुमने सही नहीं किया। तो खैर ये बताने के लिए कि अगर हम भगवान के साथ भी हैं तो भी, जैसे काला कृष्णदास का हुआ, हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है इस असत संग को त्यागना। महाप्रभु से जब कुछ लोगों ने पूछा कि भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने सबसे पहले कहा, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। असत संग को जो त्याग देता है वो वैष्णव। और असत संग क्या है, महाप्रभु बताते दो प्रकार का असत संग है। एक वो व्यक्ति जो बड़ा कामुक होकर स्त्री का संग करता है, या स्त्री पुरुष का संग करती है कामुक भाव से, और दूसरा वो जो भक्त नहीं है। ऐसे लोगों का संग करना ये असत संग कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें हमें कृष्ण से दूर ले जाती हैं। जो व्यक्ति बड़ी कामुक भाव में स्त्री का संग करता है या स्त्री पुरुष का संग करती है, शास्त्र बताते सबसे बड़ा बंधन है। और इसी बंधन के कारण व्यक्ति इतने पाप, आज देखिए समाज में कितने पाप हो रहे हैं। लोग आराम से गृहस्थ जीवन में विवाह करके नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए इतने पाप बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन स्वीकार करना है, पत्नी स्वीकार करना है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जब अवैध संग किया जाता है, काम भावना से किया जाता है, वो पाप माना गया और उसको असत्संग, ऐसे व्यक्ति का संग करना महाप्रभु कहते हैं असत्संग, उसका भी संग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को जो मिला है उसमें संतुष्ट रहकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ जीवन ये नहीं है कि हमने विवाह कर लिया, संतान हो गई, बस अब उनको पालन पोषण करना है, जीवन उसमें बीत जाएगा, नहीं। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, दोनों एक दूसरे को सहयोग करें और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें, तो इसीलिए ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो असत संग की बात हम लोग कर रहे थे, किस प्रकार हमने उदाहरण दिए भीष्म के इत्यादि कर्ण का। इतना ही नहीं, अभी हमने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति भगवान के संग में रहे तो भी असंग के कारण, कुसंग के कारण वो बिगड़ सकता है। एक उदाहरण ऐसा भी है शास्त्र में कि भगवान का जो पुत्र है वो भी असत्संग के कारण बिगड़ गया, असुर हो गया, नरकासुर। नरकासुर बताते हैं कि ये पृथ्वी के पुत्र हैं और भगवान से उत्पन्न हुए। तो भगवान के पुत्र होकर कैसे ऐसा हो गया कि वो एक असुर हो गया, नरकासुर? तो बताया जाता है कि क्योंकि उसने बाणासुर नाम के एक असुर का संग किया और उस संग के कारण वो असुर हो गया। बाद में भगवान को उसको मारना पड़ा, स्वयं कृष्ण को मारना पड़ा। तो देखिए अभी हम कहां कहां सुन रहे हैं कि कोई भगवान का भक्त नहीं है, भक्त है, भगवान के साथ है, और साथ तो छोड़िए भगवान का पुत्र है, लेकिन अगर असत्संग करता है तो फिर उसका जीवन नाश होता है, ये निश्चित है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस असत्संग को त्यागे। तो असत्संग को त्यागना है तो क्या करना चाहिए, कैसे असत्संग से दूर रहना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए, जितना हो सके यहां मंदिर में आना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना। भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना। तो इस प्रकार से अगर हम अपना जीवन जिएंगे, और क्यों भगवान के भक्तों का संग करना, क्या हम कहीं और जाकर सुखी नहीं हो सकते? ऐसी क्या बात है, हम कहीं और जाकर सुखी हो सकते हैं? ये बार बार आप लोग क्यों कहते हैं भगवान का संग, भगवान के भक्तों का संग करना, सत्संग करना, भक्त मंदिर में आना? अरे इतनी सारी जगह बनी हुई है, हम जंगल में अकेले जाकर सुखी रह सकते हैं? रह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, अकेले जाकर तो बिल्कुल सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए भक्तों का संग क्यों आवश्यक है, क्यों इतना जोर दिया गया है शास्त्रों में? क्योंकि जब हम भक्तों का संग कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं लेने के लिए? हम शरीर को नहीं, उस आत्मा को कह रहे हैं जो आत्मा भगवान का अंश है। और जब तक भगवान के भक्तों के संग में नहीं आएगी, ये बुद्धि जागृत नहीं होगी हमारी कि हमें भक्तों का संग करना है, हमें भक्ति करनी है। कभी कभी जब हम नई भक्ति शुरू करते हैं तब बड़ा जोश होता है हमें, हमें लगता है बस अब मैंने जब करना शुरू किया यही मार्ग, हम जाके सबको प्रचार करते, अपने घर वालों को प्रचार करते, आप सब जो कर रहे हो पाप है, छोड़ो उसको, बड़ा बड़ा उत्साह में रहते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद वो चला जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों में दोष देखने लगते हैं। हम जब असत संग की बात करते हैं तो ऐसे मन का संग करना, जो हमारा मन है दूषित, वो भी असत संग है। हमारे हृदय में इच्छाएं भरी हुई हैं, तो जब असत संग करते वो इच्छाएं बढ़ जाती हैं पाप करने की, तो हम लोग फिर दोष ढूंढने लगते हैं भक्तों में। इस प्रकार का संग नहीं करना है। संग हमें करना है कि हम भक्तों से भक्ति को स्वीकार कर सकें। भक्तों में दोष देखकर, समाज में दोष देखकर, और फिर उस भक्ति के रुचि को कम करके हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। भक्तों का संग मतलब भक्ति, श्री कृष्ण की कथा, भगवान की कथा, ये भक्तों का सच्चा संग है, जहां हमारे हृदय में भगवान की सेवा की प्रेरणा बढ़े। इसीलिए ऐसा सत्संग होना चाहिए जहां कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, जहां कृष्ण की भक्ति की बात हो। ऐसा सत्संग नहीं, आप लोग, हम जानते हैं कि कई टीवी चैनलों पर बहुत से तथाकथित सत्संग आते हैं। आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हम लोगों ने तो कई वर्षों से टीवी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि टीवी पर बहुत ज्यादा सत्संग होता है, कभी कभी सुबह आता है, शाम को आता है, एक चैनल पूरा चलता है। तो क्या ये सत्संग ठीक है या नहीं, एक प्रश्न आता है मन में, हमें ये सत्संग करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी सत्संग कह रहे हैं। जितने भी सत्संग आते हैं टीवी पर, अगर उनमें से पहली चीज वो प्रामाणिक परंपरा से बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं, तब तो ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों से नहीं बोलते, टीवी पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां, बढ़िया बढ़िया उदाहरण देकर बोलते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं बोलते, परंपरा नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, कृष्ण की भक्ति की बात नहीं करते। कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण एक व्यक्ति हैं, कृष्ण को समर्पण करना है, ये बातें नहीं बोलते हैं। अगर ये बातें नहीं हैं तो वो सत्संग नहीं है। सरल, टीवी में ज्यादातर मनोरंजन होता है, क्योंकि टीवी बना ही मनोरंजन के लिए है। मनोरंजन मतलब व्यक्ति को भुला देना सत्यता को, यही तो होता है ना। आप लोग कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, उसमें इतना डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं आगे क्या होगा। आपको ऑफिस जाना लेट हो रहा है, एक ही चीज होगी, लेट पहुंचोगे तो दंड मिलेगा, ये होगा आगे, लेकिन वो भूल जाते हैं। हमारा पूरा उस पर ध्यान रहता है, क्या होगा, टीवी में चल रहा है, या रात को टीवी में कुछ सीरियल देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, कहीं जाना था भूल गए। बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे बच्चे। एक बार हमने एक बच्चे से पूछा, उसकी माता जी ने, उसकी मदर ने कहा बहुत टीवी देखता है। हमने पूछा क्या अच्छा लगता है, बोले सीआईडी अच्छा लगता है। अगर सीआईडी क्या है, उसने कहा सीआईडी एक सीरियल आता है, उसमें खून होता है और फिर पकड़ते हैं। तुमने कहा क्यों अच्छा लगता है, बोले उसको पता लगना चाहिए अब क्या होगा आगे, वो पता नहीं होता इसीलिए अच्छा लगता है। तो हम लोगों से बड़ा अच्छा लगता है ना कि वो सीरियल आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है। लेकिन अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें सत्य से दूर ले जाया जा रहा है। बस जिसका मर्डर हुआ ना तो वो मरा है, जिसको पकड़ा ना तो वो चोर है। सब कलाकार हैं, पैसा मिलता है उनको, उसके लिए वो रोते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं, और ना मारते हैं किसी को, पता नहीं असली खून लगाते हैं या नकली खून लगाते हैं, क्या करते, कुछ तो लगाते हैं, कोई मरता नहीं है। अगले सीरियल में आप फिर देखिए, वो कुछ और बनकर आ जाता है। सत्य से परे ले जाता है, इसीलिए ये मनोरंजन है। मनोरंजन मतलब जो सत्य से परे ले जाए, आपको भुला दे, आप कष्ट में हो, आप दुख में हो, दुख का सही निवारण ढूंढो, इसको भुला दे। शराब पीना, मांस खाना, अवैध संग करना, टीवी देखना, ये सब क्या है, यही है कि बस हम सत्यता की तरफ से अपनी आंखों को बंद करना चाहते हैं, हम सत्य को देखना नहीं चाहते। इसीलिए संग ऐसा होना चाहिए हमारा कि हम सत्य के प्रति आंखें बंद नहीं करें। जैसे विदुर, हमने अभी वर्णन किया आपको भीष्म देव का, भीष्म उनका खा रहे थे, इसीलिए भीष्म ने खुद कहा द्रौपदी से, क्योंकि मैं दुर्योधन का खा रहा था और कर्ण दुर्योधन का खा रहा था। विदुर के क्या हुआ, विदुर भी तो वही थे। अगर हम कहते हैं कि दुर्योधन के खाने से भीष्म और कर्ण ये असत्संग हो गया, तो फिर विदुर, उन्हें क्यों असत्संग नहीं हुआ, वो भी तो दुर्योधन का खा रहे थे। तो इसका उत्तर ये है कि वो दुर्योधन का नहीं खा रहे थे, एक ही व्यक्ति थे वहां जो दुर्योधन का दिया हुआ नहीं खाते थे। बाकी सब दुर्योधन के अधीन थे, धन ले रहे थे, भोजन ले रहे थे, जो भी है। लेकिन विदुर, क्योंकि ये तीन भाई थे, आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों भाई, तो भाई के रूप में जो उनको मिला था वो अपना उसी में चलाते थे, कुछ लेते नहीं थे राज्य से, दुर्योधन से कभी उन्होंने कुछ लिया नहीं, और इसी कारण से उनकी चेतना शुद्ध थी, इसी कारण से वो सबके सामने विरोध कर सके कि ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। जब द्रौपदी का भी वस्त्रहरण हुआ, एक विदुर थे जिन्होंने कहा धृतराष्ट्र को, बंद कराइए इसको नहीं तो नाश होगा, ये विदुर ने कहा था। और जब श्री कृष्ण आए शांति दूत बनकर, ये विदुर थे जिन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो देखिए, केवल इस बार से तो असत संग उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उस भावना से अपने आप को दूर रखा। लेकिन अब हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारे लिए प्रश्न ये आता है कि हम तो जहां जाएंगे वहां असत संग है ना। आप ऑफिस में जाइए या कहीं और जाइए, मार्केट में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, मूवी में जाइए, क्या है वहां पर? सारा असत संग है। तो हम कैसे बचें? अब जीवन तो छोड़ नहीं सकते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो हम लोग सोबरी मुनि की तरह पानी में नहीं जा सकते, चले भी गए तो फिर भी बाहर आ जाना पड़ता है। तो फिर हमें क्या करना है? इसका एक बहुत सुंदर, एक छोटी सी कथा से हम लोग सीख सकते हैं। कई बार इसको हम सुना चुके, बड़ी अच्छी कथा है कि बंदर पेड़ पर बैठा है और उसका मित्र है मगरमच्छ। मगरमच्छ आकर बंदर से कहता है, आओ आज मैं तुम्हें घुमा लाऊं। तो बंदर बैठ जाता है मगरमच्छ की पीठ पर, मित्र है, पानी में चला जाता है। धीरे 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 बीच नदी में पहुंच गया। बंदर देख रहा है चारों तरफ पानी, मैं तो डूब जाऊंगा। उसने मगरमच्छ से कहा, मित्र वापस चलो, बहुत अंदर आ गए। उसने कहा, क्षमा करना मित्र, आज तो वापस नहीं जाएंगे। अरे क्यों? उसने कहा, दरअसल मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, मैंने जब अपनी पत्नी को यह बताया कि मेरा एक मित्र है बंदर, तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे बंदर का हृदय बहुत प्रिय है, तो वो बंदर का हृदय खाना चाहती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो अब मैं तुम्हें वहां ले जा। क्षमा करना, क्या करें, पत्नी की तो सुननी पड़ती। देखिए मगरमच्छ क्या भी ऐसा चलता है, मतलब ये कह रहे यहां तो चलता ही है, मगरमच्छ में भी चलता है। तो कह रहे पत्नी की तो सुननी पड़ेगी, अब क्या करें, तो इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तो बंदर ने कहा, अरे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे तुम पहले बताते, इतनी सी बात है, मैं तो अपना हृदय वो पेड़ पर टांग कर आ गया। पेड़ पर टांग के आ गए? हाँ, पेड़ पर टांग कर आ गया, पहले बताते लेकर आता, चलो वापस जल्दी से लेकर आते। हाँ ये बात तो, हृदय खाना है, तो पत्नी को प्रसन्न करना है। वापस घूम गए, किनारे पर आया बंदर, कूद कर पेड़ पर बैठ गया। अब मगरमच्छ इंतजार कर, आओ मित्र आओ। बोले ओ टाटा बाय बाय, अभी हो गया सब। वैसे तो ये जरा सी कहानी है, लेकिन हमारे लिए बहुत शिक्षा प्रदान करती है कि जब हम ऐसे मगरमच्छों के बीच में हों, तो हम होंगे ही मगरमच्छ के बीच में, मगरमच्छ मतलब ऐसे असत संग में जहां भक्ति का वातावरण नहीं है, जहां कोई प्रेरणा नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, जहां कोई प्रेरणा नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए सच्ची दृष्टि से। आप देखिए जितने स्थान हैं बाहर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे व्यापार के केंद्र हो, चाहे आप जहां काम करते हैं, जितने स्थान हैं, इतनी ज्यादा नकारात्मक भावना को प्रकट करते हैं। व्यक्ति केवल दुखी होता है, कहीं पे किसी के साथ कुछ हो गया वो दुखी है, वहां गया उसने वो कह दिया वो दुखी है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही दुखी है, प्रमोशन हो गई तो भी दुखी है, नहीं हुई तो भी दुखी है, केवल दुखी है और इस चीज को समझता नहीं है। उसको लगता है बस यही जीवन है, क्योंकि सिखलाया जाता है संघर्ष ही जीवन है। आपको यही सिखाया जाता, बचपन से हम लोग को भी यही सिखाया गया था, हम लोग जब स्कूल में थे कॉलेज में, संघर्ष जीवन है, संघर्ष करो, मतलब जीवन भर दुखी रहो, एक ही मतलब है संघर्ष का, जीवन भर दुखी रहो। क्यों? मरने तक संघर्ष ही चलेगा। कोई पूछते भी है कब तक ये संघर्ष, मरने तक चलेगा, मतलब दुखी रहो मरने तक। और जब मर रहे होते हैं तब व्यक्ति को कहा जाता है भगवान का नाम ले, राम नाम सत्य है। तो मर रहा है वो, जीवन भर तो उसको आपने नाम लेने नहीं दिया। अब वो क्या नाम लेगा। तो इसलिए हमारा जो वातावरण हमारे आसपास है वो इस तरह है कि हमें भक्ति से दूर करता है, भगवान से दूर करता है, सच्चे आनंद से दूर करता है। तो ऐसे लोगों को अपना हृदय नहीं देना चाहिए। हम घड़ियाल के साथ रहें क्योंकि जबरदस्ती है, लेकिन अपना हृदय उनको नहीं देना चाहिए। मतलब उनकी चीजों को सीख नहीं लेना चाहिए हमें। वो जैसा करते हैं, वो गलत काम करते हैं, तो हम भी जाकर सीख लें। हमने कभी जीवन में शराब नहीं पी, अब हम चले गए शाम को मित्रों के साथ बैठे हैं, मित्रों ने कहा रे पानी है, केवल रंग बदला हुआ है, क्या तकलीफ है। हम लोग भी सोचे हाँ ये बात तो सही, क्या तकलीफ है, बड़ा सॉफ्ट है ये। एक बार कोई व्यक्ति हमें बता रहे थे, हमें बड़ी हंसी आई, वो कहते मैंने बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया। अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद, केवल बियर पीता हूँ बस। तो हमने कहा बियर शराब नहीं, बोले बियर तो शराब नहीं, वो तो हेल्थ के लिए अच्छी है, वो तो हेल्थ टॉनिक है, वो तो वो कोई तकलीफ नहीं है। तो जिसको बहाने चाहिए वो कुछ भी निकाल सकता है। तो अब हम गए मित्र के पास, क्या गलती है, रंग का पानी है, पी लो थोड़ा सा। हमने मना कर दिया। अगले दिन गए, भाई क्या तुम कौन से युग के व्यक्ति हो, कहां क्या पढ़ा, कहां पे पढ़ लिया तुमने। अरे ये आधुनिक युग है, इस युग में बेटा और बाप साथ में बैठकर पीते हैं, हम तो मित्र हैं। फिर भी उसको भी लगता है, शर्म आने लगती है अपने ऊपर, मैं शराब नहीं पी रहा हूं, कितनी बुरी बात, कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं मैं। समाज में, समाज ने कितनी प्रगति कर ली। पहले तो बेटा पिता के सामने ऊंची आवाज में बोलने से घबराता था, इतनी प्रगति हो गई समाज में कि आज साथ में बैठकर शराब पीता है, और मैं गिरा हुआ व्यक्ति अभी तक शराब पीना शुरू नहीं किया, ला चालू हो जाता। ये संग का प्रभाव है ना। तो इसीलिए अपना हृदय नहीं देना चाहिए, उनकी चीजों को नहीं सीखना है हमें, अपनी चीजें उनको सिखानी चाहिए हमें। और कैसे होगा, जब हमारे अंदर शक्ति होगी, और हमारे अंदर शक्ति कैसे होगी, जब हम उन लोगों के साथ में आएंगे जो इस मार्ग पर हैं। इसीलिए सत्संग करना ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके भी जीवन में। ये जान लीजिए, कभी कभी हम लोग शास्त्र सुनते हैं, रामायण महाभारत, हमें लगता है बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, ये लोग ये कहां कहां की बातें करते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, हमें तो इतना बताइए कि जीवन के अंत में पैसा कितना मिलने वाला। सीधी सीधी बात कीजिए, पैसा कितना मिलेगा स्वामी जी, हाथ देखकर बताइए पैसा कितना मिलेगा। कई बार लोग हम लोग को बोलते, हम लोग कहीं मिल जाते ट्रेन में, अभी कहीं जा रहे थे हम ट्रेन में, तो एक व्यक्ति बहुत देर से हमें देख रहा था, हमें लगा कि कुछ तो होगा। तो आके बोलते पंडित जी हाथ देखना आता है आपको। हमने कहा हाथ के हम बाकी सब भी देख सकते, क्या चिंता है, बताओ क्या करते। लोगों को बस बताइए पैसा कब आएगा, सुख कब आएगा। अरे वहां सुख नहीं है, सुख तो यहाँ है, भगवत गीता भागवत में ढूंढ रहे हैं, हाथ में, हाथ में सुख कैसे हो सकता, भगवान भगवान के पास सुख है। तो लोगों को ये जब सुनते हैं शास्त्र भगवत गीता भागवत, उनको लगता है ये क्या ही सब बात कर रहे हैं, पैसे की बात करें, मान सम्मान की बात करें, घर में मेरे इतनी चिंता है उसकी बात करें, लेकिन उसी की बात हो रही है। ये जान लीजिए कि जब हम शास्त्र की बात करते हैं, रामायण महाभारत की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि आपको धन कैसे मिलेगा, आपको सुख कैसे मिलेगा, आपके जीवन में जितने कष्ट हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, कैसे आप दूर करेंगे, यही सिखला रहा है भागवत भगवती, कोई दूसरी बात नहीं सिखलाता। केवल हम उसको समझ नहीं पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कलयुग है जहां लोग आकर दे रहे हैं आपको कि आप कष्ट में हो, आप डूब रहे हो, ये लो रस्सी बाहर आओ। हम पूछते नहीं ये रस्सी कितने की खरीदी तुमने, कहां से खरीदी, बराबर है कि नहीं, टाइट है कि नहीं, अब रस्सी पकड़ो बाहर आओ, पहली वो चीज। लोग आ रहे हैं, भगवत गीता दे रहे हैं, भागवत दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप कौन हैं, क्यों कष्ट में हैं। ये जितने भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं ये तो हमारे कर्मों का फल है, इसको हम बदल नहीं सकते। धोखा देते हैं वो लोग जो आपसे कहते हैं 5,000 रुपए का यज्ञ कराइए सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, 5,000 और चला जाएगा, एक कष्ट और बढ़ जाएगा, धोखा देते हैं। कहीं से हमारे जीवन में कष्ट दूर नहीं होने वाले, ये हमने खुद बनाए हैं, हमारे कर्म हैं। कौन लेके जा सकता है आपके कर्म? चोर आपके धन को चुरा सकता है, आपके कपड़ों को चुरा सकता है, आपकी संपत्ति हीरे जवाहरात चुरा सकता है, आपके कर्म नहीं चुरा सकता। आपके कर्म केवल एक व्यक्ति चुरा सकता है जो चोरों में अग्रणी हो, सर्वश्रेष्ठ चोर हो, जिसको कला पता हो चोरी करने की, कि जो कर्म की चोरी कर ले। अनेक जन्मार जित चो पाप चोरम, अनेक जन्मों से जो पाप चोर हमने अर्जित किए हुए हैं उनको चुराने वाले हैं केवल श्री कृष्ण, क्योंकि उनको आपके धन से कुछ लेना देना नहीं, आपकी संपत्ति, आपके कपड़े, आपके हीरे जवाहरात से लेना देना नहीं, उनको आपसे प्रेम है। और आपसे प्रेम होने के कारण वो आपके जितने भी पाप हैं, अनेक जन्मार जित पाप चौरम, उनको चुरा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास आने से सच्चा सुख मिलता है। अगर आपके जीवन में धन है लेकिन धन के साथ साथ आपके जीवन में कष्ट लिखा है, आप बहुत धनी व्यक्ति होकर भी कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये प्रमाण है, आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन करते क्या है, हमेशा दुखी रहते हैं, कोई बीमारियां हैं उन्हें। दरअसल एक बात देखी जाती है, सारी बड़ी बड़ी बीमारियां बड़े लोगों को ही होती हैं। जितने अमीर लोग हैं उतनी बड़ी बीमारी, लाखों रुपया खर्चा करते हैं हॉस्पिटल में। तो इसीलिए ये धन हमें सुख नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इधर हमारे कर्म में ही दुख लिखा है। आप कितना ही धन कमा लीजिए, कितनी मान प्रतिष्ठा ले लीजिए, किसी देश के राजा बन जाइए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाइए, दुख लिखा है तो आएगा ही। एक बार हमने सुना था, कुछ समय पहले भारत के कोई मंत्री थे, उस समय तो वो कहीं जा रहे थे, वो खुद डॉक्टर थे और जा रहे थे, उनको हार्ट अटैक हो गया रस्ते में। उनको सब पता था क्या करना चाहिए, खुद ही डॉक्टर थे, कुछ नहीं कर पाए, मर गए बीच रास्ते में। नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा, आप लोगों को पता होगा शायद, कुछ साल पहले की बात है। खुद डॉक्टर थे, बहुत बड़े मंत्री थे, दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार में मंत्री थे, डॉक्टर थे, सब कुछ था। क्या सुविधा नहीं थी उनके पास? पैसा था, मान सम्मान था, नौकर चाकर थे, एक फोन करने पर जितने डॉक्टरों की लाइन लग जाए सब था, लेकिन जब हार्ट अटैक आया तो कुछ नहीं कर पाए, खुद ही को ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, मर गए। कष्ट जब आएंगे तो हम उनको दूर नहीं कर सकते, कोई चुरा नहीं सकता। इसी तरह जो सुख आपके जीवन में लिखा है उसको कोई चुरा नहीं सकता, ये भी जान लीजिए। आपके जीवन में सुख लिखा है तो आप घर पर आकर वो मिलेगा। जैसे एक बार एक कहानी दो मित्रों की है, दो में से एक मित्र कहता था काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तब कुछ आता, नहीं तो कुछ नहीं आता। दूसरे कहते भाग्य में होगा तो आएगा। एक दिन दोनों को जेल में डाल दिया गया किसी गलत अपराध में। अब दोनों बैठे हैं, भूख लग रही, राजा ने बोला इनको कुछ देना भी नहीं खाने के लिए, तो भूख लग रही है दोनों को। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक उसने देखा कि ऊपर एक छोटा सा खिड़की है जिससे भागा जा सकता है, तो एक मित्र ने दूसरे का, देखो मैं तो भाग रहा हूं और तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो, नहीं तो यहां भूखे मरोगे, तुमको तो विश्वास है कि जो भी है भाग्य में है तो आएगा, लेकिन मैं बताता हूं आज तुम्हें कि भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत करोगे तब आएगा, भागोगे तब आएगा, नहीं तो यहां भूखे मरोगे। तो ये मित्र जाना तो चाहता था लेकिन इसने सोचा कि इस मित्र को सिखाना चाहिए, तो उसने कहा मुझे विश्वास है कि अगर मेरे भाग्य में भोजन है तो यहीं बैठे बैठे आएगा। मित्र ने कहा कुछ नहीं हो सकता इसका, ये तो मरेगा ही, मुझे भी मारेगा साथ में। तो उसने कहा मैं तो जा रहा, तो निकल गया, चला गया। अब गया कहीं पर ढूंढ ढांड के, होटल कुछ मिला, दुकान मिली, खाने के लिए लिया उसने, बहुत भूख लगी थी तो बहुत सारा लिया कि बस अब मैं खाऊंगा। खाने जा रहा था तो उसने सोचा जेल में मेरा मित्र है ना, मूर्ख है, ये सोचता है कि भाग्य में होगा तो आएगा, भाग्य से कुछ नहीं होता, देखो बाहर आया मैं तभी तो आया, फिर भी लेकिन कुछ भी है तो मेरा मित्र, भूखा होगा मैं जाके उसको देता हूं। तो उसने वो पैक किया, वापस खिड़की से आया अंदर और उसको दिया। उसने कहा ये तुम्हें दे रहा हूं लेकिन याद रखो, ये समझा रहा हूं, मैंने अगर काम नहीं किया होता, कर्म नहीं किया होता, तुम्हें मिलता नहीं। ये जो तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि सब भाग्य का, भाग्य में कुछ नहीं होता, मैं बाहर गया, मैंने वहां से लेकर आया तब तुम्हें मिला। उसने कहा किसी भी तरह मिला हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर मेरे भाग्य में है तो यहीं बैठे बैठे मुझे भोजन मिलेगा। वो मिल गया ना, वो आ गया, तुम लेकर आए कोई भी लेकर आए लेकिन भोजन तो आ गया, बात भोजन की है। तो अब हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमें आलसी बनकर बैठ जाना चाहिए, ठीक है भाग्य में धन होगा तो आएगा, नहीं होगा तो ठीक है ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, सैलरी अपने आप महीने के एंड में उड़ती हुई आ जाएगी, भाग्य में है तो, है ना। और भाग्य में नहीं है तो पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी वो लोग पैसा नहीं देंगे, तो क्या करना चाहिए, खाली बैठना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना अपना कर्तव्य करते हुए, कार्य करते हुए हमें मिल जाए उसमें संतुष्ट रहें। ये जान ले कि अगर इससे ज्यादा लिखा है तो अपने आप आएगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम आलसी हो जाएं, कोई कार्य नहीं करें। उसका अर्थ है कि अपना कार्य करें लेकिन आसक्त ना हो, बहुत ज्यादा चिंता ना करें कि कब कब, 6 साल हो गया नौकरी लग के अभी तक 2-व्हीलर पे चल रहा हूं, कब 4-व्हीलर, कब, चिंता नहीं, जो दिया है भगवान ने उसमें संतुष्ट। हाँ धूप में आने में तकलीफ होती है 2-व्हीलर में, लेकिन फिर भी ठीक है, भगवान की इच्छा है तब तक आते रहे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए और इसीलिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सत्संग को त्यागना चाहिए, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि हम गलत चीजों की ओर बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं, ये स्वभाव बन चुका है हमारा इस जगत में रहते रहते बद्ध अवस्था में। आप देखिए ये सबको मालूम है, अभी यहां सत्संग हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, अभी सुनाई दे कि वहां फला फला कुछ हो गया, ये हो गया, सब भागेंगे वहां देखेंगे। गलत चीज सुनते ही हमारा, हमारे कान, हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होता है, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, ये हो गया। किसी को कोई आकर आपको बताता है तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा फ्रेंड है, हाँ हाँ उसने ऐसा ऐसा किया, हाँ ऐसा किया, हाँ मैं तो बड़ा अच्छा समझता था, अरे बड़ा बेकार आदमी है, सारे काम हमारा। कोई अगर उसका गुणगान होगा कि नहीं वो बड़ा अच्छा है, नहीं ठीक है होगा अच्छा, ज्यादा हमारा मन उस तरफ नहीं जाता। तो क्योंकि हमारा मन स्वाभाविकता गलत चीजों की ओर भागता है, अगर हम असत संग करेंगे, गलत संग करेंगे तो उसको और बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए अच्छा संग करेंगे थोड़ा कष्ट होगा। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ये जो हम लोग सुख की कामना कर रहे हैं, दरअसल दुख है, सुख है ही नहीं, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न एवते। भगवान कहते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुधा, वो क्या करता है, वो सत्संग करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यही संस्पर्श जाग होगा, दुख योने, जो मैं आनंद लेने का प्रयास कर रहा हूं जिन चीजों से, दुख मिलने वाला है। जब हम किसी चीज को, गलत चीज को करने जाते हैं तो शुरुआत में अच्छी लगती है, अमृत, लेकिन अंत में जहर है। भक्ति करने जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा जहर जैसा लगता है, अरे क्या है, माला करो, आओ मंदिर में इतनी धूप में, कथा सुनो, और वो भी एक घंटे तक बोलते रहते, बंद भी नहीं करते हैं, सुनना पड़ता है, बैठ गए क्या करें, जा भी नहीं सकते बाहर उठकर, क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा है, ठंडा होता तो चले जाते थे। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जपा करना है, ये करना, ये छोड़ो वो छोड़ो, कहा जाता है ये नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, ये नहीं खाना, आनंद नहीं। लेकिन ये थोड़े से समय के लिए है, अगर इसको कर लिया तो आगे केवल आनंद ही आनंद है हमारे जीवन में। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि सत्संग के द्वारा हम भगवान को समर्पण करें, अपनी इच्छा से चीजें ना लें, भगवान जो दे उसको स्वीकार करें। एक छोटी सी कहानी बताकर इसको आज समाप्त करेंगे। एक माँ अपने छोटी सी बच्ची को लेकर एक स्थान पर गई, बेकरी थी जहां पर बड़ी सारी चॉकलेट्स बनती थी, तो वहां बन रही थी बहुत सारी चॉकलेट थी। बच्ची को वो जो मालिक था वहां का, उसने कहा कि ले लो जितनी चॉकलेट चाहिए तुम्हें, तो उठा लो अपने हाथ से। बच्ची ने कहा नहीं। तो मां को बड़ा गर्व हुआ, अच्छा लगता है ना, क्योंकि बच्चे तो कभी करते ही नहीं है। शॉप में लेके जाओ तो पीछे पीछे एक चॉकलेट उठा के ले आते, बाप मां भाई कहां से उठाए, वो वहां से लिया था, फिर मां को वापस जाना पड़ता है देने के लिए, क्षमा करो बच्चा ले गया उठा के। लेकिन यहां वो बोल रहे हैं उठाओ ले लो जितना चाहिए अपने, बोले नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मां जरा गर्व हो गया, कितनी अच्छी बच्ची है मेरी। तो जब वो जाने लगे तो वो जो मालिक था उसने कहा रुको, क्योंकि उसने सोचा ले नहीं ली, तो उसने अपने दोनों हाथ से पूरा भरा चॉकलेट और उसको कहा ले लो। तो बच्ची ने तुरंत हाथ आगे कर लिया, ले लिया। मां को बड़ा गुस्सा आया, बाहर आई तो थोड़ा सर के पीछे मारा थप्पड़। मैं सोच रही थी कितना अच्छा लगा था जब तुमने मना किया कि चॉकलेट नहीं, क्यों ली चॉकलेट। बच्ची ने कहा मैं जब जा रही थी अंदर तभी मैंने निर्णय कर लिया था कि अगर ये मुझे कहेंगे चॉकलेट लेने के लिए अपने हाथ से तो मैं कभी नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो खुद देंगे चॉकलेट उनके हाथ से तो मैं ले लूंगी, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट आएगी उनके हाथ से। मैं उठाती तो छोटे हाथ है कितने आते, उन्होंने उठा के दिया तो बहुत ज्यादा आएगी। बच्ची स्मार्ट थी एकदम ना, हमें भी ऐसा स्मार्ट बनना चाहिए। जब हम आते हैं कुछ चीजें अपने आप लेते हैं इस जगत में तो कितना ले सकते हैं, हमारे हाथों में कितनी शक्ति है। लेकिन अगर भगवान अपने हाथों से हमें कुछ दें तो कितना होगा, वो जब भगवान अपने दोनों हाथ भरकर हमें कुछ देंगे कितना होगा। एक चॉकलेट होगी, दो होगी, भगवान के छोटे छोटे हाथ है ये, भगवान के तो सारी जगह हाथ दिख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए। तो जब वो अपने हाथों से उठाकर भरकर देंगे हमें तो कितना होगा। तो आप सबको उस बच्ची की तरह स्मार्ट होना चाहिए कि हम सत्संग में आए, भगवान के मंदिर आए, और जब भगवान अपने हाथ से देंगे तब लें, अपने इच्छा नहीं। हम लोग कुछ बाहर से थोड़ा नौकरी करके पैसा कमा लिया, थोड़ा इधर से कमा लिया, वो इतना ही है, छोटे हाथ है हमारे। भगवान जब देंगे तब बहुत होगा। तो इसीलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है। बारंबार जब सत्संग में हम लोग आते हैं तो हमारी चेतना बदलती है, फिर हम अपने जीवन को बदलते। जैसे हमने बताया केवल शरीर से आना पूर्ण नहीं है कि हम आकर बैठ गए, हमें जीवन बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे भीष्म देव ने द्रौपदी से कहा कि क्योंकि मैं दुर्योधन का खा रहा था, मेरी चेतना अधर्म में लग गई, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया उस समय, इसी तरह हमें जानना चाहिए कि हमें भी खाना पीना क्या चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कम से कम हमारी चेतना शुद्ध रहे। ये जान लीजिए कि आप जीवन में जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जिन लोगों का संग करते हैं, ये सब आपकी चेतना पर प्रभाव करता और ये सब मिलकर आपकी मानसिकता को बनाता है। इसीलिए शुद्ध भोजन खाना चाहिए, केवल भगवान को अर्पण किया हुआ। शुद्ध संग करना चाहिए, केवल भगवान के भक्तों का। शुद्ध ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भगवद गीता भागवत को। हम लोग बहुत सुनते हैं, कभी कभी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है भगवद गीता पर तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, भगवद गीता हमारा ग्रंथ है। भारत में हुआ था, रशिया में जब भगवद गीता बंद करने लगे तो बड़े विरोध होने लगे, भारत में सब कहने लगे नहीं करना चाहिए। उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप कितनी बार भगवद गीता पढ़ते हैं, कितनी बार भगवद गीता पढ़े। तो भगवद गीता पर खाली अहम करना कि हमारा ग्रंथ है ये पूर्ण नहीं है। उसको पढ़िए, उसको जीवन में उतारिए, जीवन को बदलिए। हम जैसे हैं बस वैसे ही रहेंगे, हम शराब पीते रहेंगे, हम मांस खाते रहेंगे, हम गलत काम करते रहेंगे, भगवान को आना है तो आए, नहीं तो अपने घर खुश रहे। नहीं, जीवन को बदलिए। अब बहुत समय हो गया, अब बदलाव लाइए। ये पाप की चीजों को छोड़िए, एक ऐसा जीवन जिए जिससे जीवन के अंत में हमें गर्व हो अपने जीवन पर कि हमने कुछ किया भगवान के लिए। नहीं तो ऐसा जीवन केवल व्यर्थ होगा जहां हम मृत्यु के समय भी सोचेंगे 2 वर्ष और मिल जाते तो शायद मैं इस्कॉन मंदिर में अगले संडे जाने वाला था, कुछ नहीं होने वाला। बस अगले संडे सोचा था जाऊंगा, अब ये संडे में मर रहा हूं। भगवान देखो आपके आने के लिए कहा था 1 हफ्ता और, कुछ नहीं देने वाले। यमराज बोलेंगे हो गया टाइम चलो। यमराज के पास कोई ये नहीं है कि आप बोल दें कि थोड़ा कुछ ले देकर कुछ काम हो जाए, कुछ नहीं होने वाला यमराज के पास। इसीलिए अभी इसी समय अपने जीवन को बदलिए, प्रण लीजिए कि आज से। और क्या तकलीफ है अगर हम अब कुछ नियमों का, ज्यादा भी नियम नहीं, थोड़े नियमों का अगर हम पालन करते रहते जीवन कितना अच्छा हो जाता है। लोग मांसाहार करते हैं, कितना पैसा बर्बाद होता है। आज हमने सुना बहुत महंगा है ना, महंगा। यहां तो सारे भक्त दिख रहे हैं। ओके, मच्छी भी बहुत महंगी हमने सुना है, पता नहीं कारोबार में सस्ती होगी क्योंकि बहुत मिलती है, लेकिन वैसे महंगी। शराब पीते हैं, बहुत पैसा, सस्ती है कि शराब, पानी से सस्ती है। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अवैध संग करते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं क्योंकि शराब पियेंगे तो जाना ही जाना डॉक्टर, डॉक्टर की तो दुकान ही इसीलिए चल रही है कि आप लोग शराब पी रहे हैं सब, आप लोग नहीं, सॉरी क्षमा चाहते, जो भी पी रहे हैं। मांस खाते हैं क्योंकि मांस हमारे शरीर के लिए बना नहीं है, शरीर खराब होता, फिर डॉक्टर के पास। यानी आप खाने में पैसा बर्बाद करते हैं, फिर डॉक्टर के पास पैसा बर्बाद करते हैं उसको ठीक करने। खाइए ही मत, अगर खाएंगे नहीं बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दोनों पैसा बच गया, राइट। लेकिन हम लोग वो नहीं करते। तो पहला गलती इस काम में, शराब पीना, मांस खाने में पैसा बहुत बर्बाद होता है, जुआ खेलने में, जुआ में तो बहुत होता है। दूसरा, हमारा शरीर खराब होता है। तीसरा, हम कृष्ण के दूर चले जाते हैं। लाभ क्या है इन चीजों का? और अगर हम छोड़ते हैं पैसा बहुत बचता है, सही बता रहे आप लोग, छोड़ के देखिए कुछ दिन और कैलकुलेशन कीजिएगा कितना पैसा बचा है कि नहीं। चिकन महंगा है ना, छोड़कर देखिए महीने भर का कैलकुलेशन कीजिए कितना बचा आपको। और फिर साथ साथ जो चेतना शुद्ध होगी, आपको अपने आप अंदर से गर्व महसूस होगा कि हमने कुछ अच्छा किया जीवन में, और फिर वो भावना आपको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में प्रेरणा देगी। तो इसलिए आप सबसे विनती है कि अब बहुत समय हुआ, अब जीवन को गंभीरता से लीजिए। जीवन कितना है कोई नहीं जानता, जितना है उसको अच्छे कार्य में लगाइए, सत्संग में लगाइए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके और भगवान की कृपा आप सब पर आ सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में, केवल मांस का रेट कितना है मत पूछिएगा, हमें नहीं पता, लेकिन बाकी कोई और प्रश्न। यस माता जी, माइक देना।
हरे कृष्णा मुक्ति और मोक्ष जो अलग अलग बातें हैं, दोनों का एक ही अर्थ है?
मुक्ति और मोक्ष शब्द का एक ही अर्थ है, लेकिन उसको दो अलग अलग तरह से समझते हैं लोग। जिनको प्रमाणिक तौर से ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो मोक्ष को अपने अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया मानते हैं। जैसे लोग कहते हैं हमें भगवान में लीन हो जाना है, उसको मोक्ष मानते हैं। और जिनको ज्ञान है प्रमाणिक तरीके से आचार्यों की कृपा से, वो ये जानते हैं कि मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है ये जो हमने बाहरी रूप ले रखा है, जो हमारा असली रूप है नहीं, उसको त्याग कर असली रूप को प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगना, उसको मुक्ति कहा जाता है। तो वैसे तो मुक्ति और मोक्ष शब्द का दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन अपने अपने ज्ञान के आधार पर लोग उसको अलग अलग समझते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद, अच्छा प्रश्न था, लोगों को कंफ्यूजन रहता है मोक्ष और मुक्ति में। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो?